দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। বলো শ্রী গুরুজি মহারাজ কি জয়, গুরু পরম্পরা কি জয়, অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়, সপার্ষদ গৌরহরি কি জয়, গৌর নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদর্শন জীব কি জয়, ভক্ত বিঘ্ন বিনাশন কারণী সিংহদেব কি জয়, ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়, সর্ব অভীষ্টব্রতা গিরিরাজ গোবর্ধন জীব কি জয়, গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন জীব কি জয়, জয় রাধা দামোদর জীব কি জয়, জয় ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয়, ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ কি জয়, ব্রজেশ্বরী মদীশ্বরী প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধারণী কি জয়, ব্রজদেবীগণ কি জয়, সমবেত গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়, গৌরপ্রমানন্দে হরি হরি বোল। শিশিমঠ দামোদর অষ্টকম সত্যব্রত মুনি সনাতন গোস্বামী হন গুরুবর্গ, সবকে হয়তো কৃপা প্রার্থনা করতে হ্যাঁ, জিসে কি রাধা দামোদরজি আর উনকে প্রিয়জন প্রসন্ন হো। আব আমলোগো নে অভি তক শোনা কি নমস্তে অস্তু দামনে স্ফুরদীপ্তি দামনে তদীয় উদরায়ত বিশ্বস্য দামনে, বতাতে হ্যাঁ বিশ্বস্য, ইয়ে বিশ্ব যে চর চর জগত হিসকে যে আধার স্বরূপ হ্যাঁ, স্বয়ং ভগবান হ্যাঁ, উনকো কোই সাধারণ শক্তি উনকো পরাস্ত নেই কর সকতে না বান শক্তি, ইসলিয়ে ইয়া কহতে হ্যাঁ নমস্তে তো দামনে, মানে নমস্কার করতা হুম উস রশ্মি কো, ও রশ্মি কোই সাধারণ নেই হ্যাঁ, উসমে ব্রহ্মতেজ সময় হুয়া হয় আর ব্রহ্মতেজ ইয়ে যে ব্রহ্ম কা তেজ হ্যাঁ, ভর্গ দেবস্য ধীমহি, দেবস্য ভর্গ, ভর্গ মতলব তেজ, তো দেব কৃষ্ণ দেবস্য ভর্গ, কৃষ্ণ ভগবানকে যে তেজ হ্যাঁ শক্তি হ্যাঁ ওই ভগবানকে ভালোই বাঁধলে, নেই তো অন্যত্র আর কিছু সামর্থ্য নেই হ্যাঁ, তো এসে বাসলেরস অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে নন্দ যশোদা আদি এরকম বহুত কোশিস করলি যশোদা মাতা নে বাঁধ ন সকে, ফের জবকি উনি প্রার্থনা কি শরণাগত হুয়ে তব ভগবানকে শক্তি হ্যাঁ ও ব্রহ্ম তেজ আকরকে প্রভুকে বাঁধ লিয়া, তো ইহা কহতে জবকি উনি ধ্যান কিয়া ইয়ে ব্রহ্ম তেজ ক্যা হ্যাঁ, ইয়ে শক্তি ক্যা হ্যাঁ, তব উনি দেখা ইয়ে কই রুক্মিণী নেই হ্যাঁ, সত্যভামা নেই হ্যাঁ, মা লক্ষ্মী নেই হ্যাঁ, উমা রমা সত্যসচী নেই হ্যাঁ, ইনলে ইনকে অন্দর মে ইতনা শক্তি নেই কি এ ভগবান কো বাঁধলে অব ভগবান কো বশীভূত করলে, তো যশোদা মাতা কেসে কর শক্তি হিসে যশোদা মাতা সাধন অভি তক বহুত শক্তিশালী কেসে হুই উনি ব্রহ্মতেজ কা আশ্রয় কিয়া, অর্থাৎ দেখা কৃষ্ণকে যে সবসে অধিক প্রিয় হ্যাঁ স্বরূপশক্তি হ্যাঁ, ও শ্রীমতী রাধারানীকে প্রতি উনকা বহুত আদর হ্যাঁ, ইতনা প্রীতি হ্যাঁ কৃষ্ণসে অধিক প্রীতি ও রাধারানীকে লিয়ে করতি হ্যাঁ, যবই শ্রীমতী রাধারানী কবি যাবর সে ইয়া আনন্দগাঁও সে বর্ষানা সে বিশ্বানপুর সে আতি হ্যাঁ, যশোদা মাতা ইন্তজার করতি হ্যাঁ, ই দেখতেই গোদি মে লে লিয়া আর সর সুঙ্গনে লগ গে পসিনা পসিনে লগ গে আর অন্দর লে যা করে বেঠা করকে আপনি হাতো সে হ্যাঁ উনকো পঙ্খা করনা আর উনকে লিয়ে বস্ত্র আভূষণ অলঙ্কার আদি দেনা সব তরসে ও সেবা করতি হ্যাঁ, আর বচপন মে দেখা যাতা যশোদা মাতা বিশ্বানপুর মে আই রাল মে विश्वामित्र महाराज ने निमंत्रण दिया नारद जी के आदेश से, तब कृष्ण को और राधा रानी को एक ही पालना में जब सुला दिया, तब क्या किया, विश्वान महाराज उनके गोदी में दे दी अपने लाडली को। तो उन्होंने कृष्ण का अधरामृत अर्थात कृष्ण को जो स्तन पिलाती थी वो राधा रानी को उन्होंने अपना स्तनपान कराया। जब से कृष्ण को उच्छिष्ट पान करने के बाद से वो अपना भोजन पान शुरू कर दिया। इसके पहले आँख न खोली, न दर्शन किया, न कुछ खाया पिया। तो नारद जी के आदेश से उन्होंने नंद महाराज को जसोदा माता को निमंत्रण दिया। तो कहते हैं देखा कि जसोदा माता जब शरणागत हो गई, प्रार्थना करने लगी, तो ये ब्रह्म तेज ब्रह्म शक्ति आकर के और उनको बांध रहा है, नहीं तो कोई संभव नहीं है। कोई सद्गुरु का चरणाश्रय कर ली, करने के बाद में यदि साधन नहीं किया और शक्ति उनके पास नहीं आया, तो वो कभी भी मंत्र देवता को प्रसन्न नहीं कर सकती। इससे साधन करना है, क्या साधन करना है कि शक्ति के आश्रय करना है। गुरु के अंदर में भी वो शक्ति समाये हुए हैं, वैष्णव के अंदर शक्ति समाये हुए हैं, भक्त के अंदर शक्ति समाये हुए हैं। उन लोगों ने साधन के द्वारा या अपने भजन के द्वारा सेवा के द्वारा उन्होंने उनके आश्रय लेकर के शक्ति के और उनको हृदय में धारण किया। जिस शक्ति के द्वारा ही वो शक्तिमान को प्रसन्न कर सकते हैं। जब सत्यव्रत मुनि ने देखा तब वो हैरान हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, सब भूल गए। अब क्या कहते हैं, अब नहीं कहते हैं नमामि शरणम सच्चिदानंद रूपम, ये नहीं कहते हैं, और न कहते हैं कि वरंग देव मोक्ष। सात श्लोकों को कहते 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 अब थक गए, अब नहीं बोलते हैं। अब वो बार बार एक ही बात कहने लग गए, क्या, नमो राधिका होई तदीय प्रिया होई। कहते पहले क्यों नहीं बोला, पहले ही बोल देते ये बात को और ऐसी साधन करते कि नमो राधिका होई तदीय प्रिया होई। सीधा वंदना करने गए, सब स्तुति करने गए, आराधना करने गए, उनके गुणगान करने गए, किंतु पहले ही आश्रय ले लेते, पहले ही बोल देते तो सब काम एक आसानी से हो जाता। कहते हैं इतना साधन में प्रवेश नहीं करने के बाद में, करने के पहले, साधन के पहले अभी सिद्धि इतना करतलगत नहीं होता। और जब तक साधन नहीं करेगा तब तक बुद्धि सुधरेगा नहीं, बुद्धि एक साथ में नहीं सुधरता। कहते हैं जैसे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्थ प्रकाशन्ति महात्मनु। भगवान प्रति जितना श्रद्धा होता है, एक व्यक्ति घर में गोपाल की सेवा करते हैं, गिरिराज जी की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की करते हैं, महाप्रभु करते हैं, किंतु उनके प्रति जितना श्रद्धा है इतना गुरु के प्रति नहीं है, किंतु बुद्धिहीन है। भगवान की सेवा कर लो, कितना भी कर लो, जब तक वो शक्ति नहीं है तब तक भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, और न कितना चेष्टा कर लो कुछ हाथ आएगा नहीं। इससे कहा जैसे देवे पराभक्ति, जैसे भगवान के प्रति श्रेष्ठा पराभक्ति श्रेष्ठ भक्ति है, ऐसे ही यथा देवे तथा गुरु, ऐसे ही गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, ऐसे पूजा सेवा होना चाहिए। अब भगवान के लिए हम कितना खर्च कर डालेंगे, यदि बोले गुरु को दे दो। किसी एक समय ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा है, तो किसी एक आश्रम में जो महंत महाराज, तो उनसे बातचीत चल रहा है, कथा कीर्तन चल रहा है। तो महंत महाराज कहते हैं मैं गुरु के आदेश से प्रतिदिन 5 लीटर दूध मंगाता हूँ, खीर बनाता हूँ, दूध का भोग लगाता हूँ और इतना इतना सामान लाता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ भगवान को समर्पण करता हूँ, और विशेषकर कार्तिक में, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मैंने बोला साक्षात गुरु महाराज विराजमान है, जितना आप भगवान के लिए खर्च कर सकते हैं तो उनका प्रसाद के भागीदार कौन होता है, हैं? तो हमारे भक्तों को बांट देते, हम भी ले लेते हैं। तो मैंने गुरु जो साक्षात विराजमान है उनके लिए 5 लीटर दूध है, तो क्या गुरु जी के लिए सौ ग्राम पहुँचाते हो, देते हो? नहीं, मैं समर्पण करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, समर्पण करते हो, किंतु साक्षात गुरु महाराज विराजमान है तो उनको 100 ग्राम तो नहीं, 1 ग्राम भी देते हो? तुम्हें साक्षात उनके प्रति सेवावृत्ति नहीं है, तुम मानसिक मन में समर्पण करते हो, और उसका फल कौन पाता है? हम खुद। तो ये इंद्रिय तर्पण या भगवत अर्पण, समर्पण गुरु का समर्पण है, गुरु की सेवा है। तो हम लोग मुख से बहुत कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए लाखों करोड़ों खर्च भी कर डालेंगे, किंतु गुरु के लिए, वैष्णव के लिए नहीं कर सकते, चाहे कितना भी हो जाए। हैं क्यों? भगवान को दिखाते हैं हमारे इत्र मिष्ट, मैंने अपना कुटुंब, इष्ट मित्र और परिवार, भाई बंधु, नहीं तो अपना अहंकार अभिमान है क्या? मेरे शिष्य, मेरा अनुजाई, मेरा कौन है? मैं नाम कमाऊंगा, इतना बड़ा भंडारा करूंगा, इतना लोगों को खिलाऊंगा, तो मेरा बहुत नाम होगा, मैं यशस्वी बन जाऊंगा। किंतु गुरु के लिए करेंगे तो आप मनुष्य यशस्वी दुनिया का तो खातिरदारी होंगे नहीं है। किंतु सर्वस्व गुरुवे दद्दत, सब कुछ गुरु के लिए समर्पित होना चाहिए, तब तो शक्ति आएगा। ये भूत प्रेतों की सेवा करके शक्ति कहाँ से आएगा? इससे किसी एक समय मथुरा में महाराज जी कहते हैं मुझे, क्या बोलते, देख आज भंडारा है, ढें तो बोले कितना दिया? तो 5,000 रुपये। तो 3,000 रुपये मेरे को दे। तो क्यों, कैसे करूँगा? देख 2,000 रुपये तो खर्च करेगा, 3,000 मेरा है। तो मैं उस समय बड़ा दुखी हो गया, अरे लोग क्या कहेंगे, 2,000 रुपये में क्या हो सकता है, और 3,000 बोलते मेरे को दे दो। तो बोले तू सेवा करेगा कि मैं सेवा करता हूँ? तू क्या करेगा हैं, जानता है सेवा किसे कहते हैं? तो मैं तो उस उन दिनों में तो समझा नहीं, फिर धीरे धीरे बुद्धि अकल आई तो मैं बोला ये 5 है तो और कुछ जोड़कर वो भी दे देता हूँ, ले लो, क्योंकि मेरे को क्या है, मैं तो लोगों के नाम कमाने के लिए, लोगों के सामने बहादुरी करने के लिए रसगुल्ला भी लाऊंगा, दही भी, लस्सी बनाऊंगा, दुनिया भर के 50 आइटम बना कर उनको खिला दूंगा, किंतु हाँ गुरु के प्रति विधान के लिए तो कुछ करा नहीं, गुरु के अनुगत्य करा नहीं। एक दिन 10-11 बजे बोलते हैं कार्तिक मास में, इस महीने में बोलते, देख एक बात सुन, आज खीर बनाना। तो मैंने बोला हाँ खीर तो रोज ही बनते हैं। बाहर आया तो जितने चिल्ला चपटे, जितने अधिकारी, सब ने क्या बोला, आज के भंडारा में खर्चून आना चाहिए, राबड़ी आना चाहिए, रसगुल्ले आना चाहिए, और दही भल्ला, रस्सी, लस्सी, ऐसे बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम, मक्खन के समोसे ऐसे होना चाहिए। मोहन भाई गुरु जी ने आदेश दिया खीर बनना चाहिए। बोले खीर तो रोज ही खाते हैं, ये फिर भंडारा क्या? तो मैं और सब लोग पीस डाले, हाँ कितना भी खर्च हुआ आज ये सब होना चाहिए। अब जब सब चीज़ बना, भोग लगा, गुरु जी का प्रसाद गया, तो उन्हें टटोरा कोई खीर की कटोरी दिखी नहीं। तो मेरे को बुलाया, इधर आया, बोला आज खीर बनाने को तेरे को बोला ना, तो बनाया नहीं। मैं बस सब लोगों ने बहुत आग्रह किया कि रोज़ खीर बनता है, आज मिठाइयाँ अच्छे अच्छे आना चाहिए। हाँ तो इससे मैं लाया, बस थाली रह गया, उठ के बैठ गए, तुलसी दल लेकर के खाए नहीं हैं। पर तुम सबके नौकर हो, गुलाम हो, सबके अर्दाली चमचे हो, या तुम मेरे को भी मानते हो, मेरे भावना को समझते हो कि नहीं? तुम जानते हो कुछ भी? तुम्हारा अकल है? वो दिन है और आज एक दिन है, इसलिए गुरु के प्रति ऐसे श्रद्धा होना चाहिए जो भगवान से अधिक है। भगवान स्वयं कहते हैं आचार्य मांग बीजानियात नवमन्नते कहरिचित न मर्त बुद्ध स्वेत सर्वदेवमय गुरु। गुरु जैसे चाहते हैं ऐसे को चलो, तो बुद्धि खराब नहीं होगा, आगे जीवन में भगवान के साथ संबंध आएगा। क्यों? गुरु के पास वो शक्ति संचारित है। इससे अपने चेष्टा से कितना साधन कर लो, हैं वो कहते हैं राम नाम के अंक है सब साधन है सुन, और अंक गए तो क्या रहा, और एक अंक है तो वो शून्य क्या होगा, दस दस गुण बढ़ेगा। हैं यदि गुरु के द्वारा ही हम भगवान को जाने, समझे सेवा अधिकार मिला या सेवा करने जा रहे हैं, किंतु हमारा श्रद्धा जितना गुरु के भगवान के प्रति होता है और इतना गुरु के प्रति पासंग में भी है क्या, है इसलिए सिद्धि नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं कि अब तक पूरे श्वेतवतम उन्होंने साधन का तरीका दिखाया, उपाय दिखाया, किंतु आखिरी में जाकर के देखा ये साधन तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, हैं वो नलकुबेर मणिपुरी ग्रीप को नारद जी के कृपा से ब्रज में भेजने से भगवान बंधे हुए हैं, किंतु अपने बंधन स्वीकार करके भी उनको मुक्त कर दी, हैं क्यों, गुरु ने भेजा, गुरु का आश्रय और उनको एकदम सिद्ध स्वरूप सिद्धि देकर के ब्रज में नित्य ब्रज में भेज दिया, नित्य सेवा में अधिकार नाम देकर के सेवा अधिकार देकर भेज दिया। और मेरे को तो इतना स्तुति करने के बाद में भी कुछ नहीं मिल रहा है, तब अकल आए, ठिकाना आए, भगवान को बांधने के लिए तो कोशिश कर रहे माता बांध नहीं पा रही है, आखिरी में बंध गए तो ये रस्सी में बहुत ब्रह्म तेज समाया गया, शक्ति समाये हुए हैं, तब ये शक्ति कौन है, तब ध्यान किया, अरे ये शक्ति तो स्वयं साक्षात राधारानी है, और कोई शक्ति उनको बांध नहीं सकती हैं। जब उन्होंने प्रणाम किया नमो राधिका हुई तदीय प्रिय हुई, और किसी के प्रिय नहीं आपके प्रिय है, इसलिए मैं आपके पास प्रणाम करता हूँ नमो, ये पहले श्लोक से क्या बोला हैं, जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, तो भाई ये तो दिरुक्ति दोष हो जाएगा, एक तो विष्णुपादाय बोला फिर बोला कृष्णपृष्ठाय, भगवान के चरणों में है विष्णुपाद गंगा के समान है, भगवान के चरणारविंद में है, फिर कृष्ण के प्रिय कैसे हो गए हैं, यदि भगवान विष्णु के पास कोई आ जाता है तो कृष्ण के प्रिय कैसे बन गया, कृष्ण के पृष्ठ निजन कैसे बन गया, विष्णु के पास शरणागत होने से होता है क्या। तब हमारा आचार्य विशेषकर रसिक वैष्णव ने व्याख्या किया और करते हैं, कहते हैं देखो विष्णु क्यों कहा व्यापनोति, विष्णु विष्णु सर्वत्र विराजमान है, किंतु विष्णु अपने हृदय में विराजमान नहीं है, उनके हृदय में तो श्रीमती राधारानी विराजमान है, तो विष्णु सर्वत्र नहीं है, फिर व्यापनोति विष्णु कैसे हुआ, तो विष्णु कौन हुआ, ये शक्ति श्रीमती राधारानी बताया, विष्णु अत्यंत बल्लभा हैं, तो ये राधाकुंड के लिए बोला क्या है, विष्णु अत्यंत बल्लभा, अरे राधाकुंड की स्तुति कर रहे हैं और कर रहे हैं विष्णु अत्यंत बल्लभा, किंतु यहाँ विष्णु व्यापनोति विष्णु मतलब विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, किंतु भगवान के हृदय में कौन है, सर्वशक्ति श्रीमती राधारानी है, तो राधारानी विष्णु है, इससे बतलाया विष्णुपाद है, राधारानी के चरण कमल में जो आया है वही कृष्ण के प्रिय है, और कोई कृष्ण के प्रिय नहीं हो सकता, इसे दिरुक्ति दोष नहीं है, हैं क्योंकि एक शब्द को एक चीज़ को पुनः पुनः उच्चारण नहीं किया जाता है या व्यवहार नहीं किया जाता है, ये दोष होता है। तो यहाँ इससे बतलाया नमोंग विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, तब हैं किसी एक समय किसी ने बोला ओ आप लोग स्वामी जी को प्रभुपाद नहीं कहते हैं, आप लोग स्वामी जी करते हैं, तो मैंने बोला मैं हम बचपन से क्या सुना है क्या सीखा, आप लोगों ने क्या सिखाया, तुमने क्या सिखाया, और आपने कहा नमोंग विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, आपने तो नहीं कहा प्रभुपाद इति नामिने, आपने कहा स्वामी इति नामिने, भाई सिखाया आपने, अब क्यों गलती देख रहे हो, दोष देख रहे हो हैं, आपने सारा दिन कीर्तन कर नमोंग विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत सामिति नामिने। भाई ये तो नहीं कहा प्रभुपाद इति नामिने, सीखा आपने और आप ही कीर्तन करते, सारा विश्व दुनिया कीर्तन करता है, वहाँ तो प्रभुपाद का नाम ही नहीं है, हैं उनके स्तुति में और निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी ने ग्लोरीफाई किया, तो इसको भी जोड़ो ना। क्यों नहीं जोड़ा? वहाँ तो जोड़ा नहीं है, एसी भी नहीं जोड़ा और वहाँ प्रभुपाद भी नहीं जोड़ा, तो फिर कैसे होगा? जो मंत्र है, मंत्र के देवता का वही स्वरूप है। अब उस स्वरूप को हम कैसे बिगाड़े? तो क्या जवाब देगा? कोई जवाब है? किंतु वो कैसे हैं उनका स्वरूप? नमो विष्णुपादाय, वो राधा रानी की अत्यंत तो प्रियजन है, हैं और कृष्ण के इसलिए प्रिय है, और वो सबके स्वामी हैं, अर्थात सबको पालन पोषण करने वाला है, सबको रक्षा करने वाला है, सबका देखभाल करने वाला है, और सबको प्रेम से हैं, जैसे वो राधा रानी के प्रिय है ऐसे प्रेम से अपने प्रियों के सेवा में नियुक्त करने वाला है, हैं। तो इसलिए यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं, हाय हाय इतना दिन मेरा व्यर्थ गया, मैं नहीं समझा कुछ भी, अब ये ब्रह्म तेज को देख करके हमारे अंदर में थोड़ा ज्ञान आया, ये तेज आया कहाँ से? तो गुरुजी ने यहाँ पर जीव गोस्वामी ने विशेष व्याख्या किया, क्या कहते हैं यदि उसको पढ़ेंगे ये ब्रह्म गायत्री की व्याख्या तब होश आएगा, हैं। उन्होंने कहा कि देखो ये जो भर्गो देवस्य धीमहि, इनका नित्य सब समय ध्यान करो, किसको? भर्गो देवस्य, देवस्य भर्ग, देव कौन है? एकमात्र कृष्ण देवस्य भर्ग, कृष्ण ही देव देव है, उनके ही भर्ग, उनके ही तेज है, उनका ही ध्यान करो। यहाँ कृष्ण का ध्यान नहीं करने का, इस मंत्र का अधि देवता एकमात्र श्रीमती राधा रानी, और कोई है ही नहीं। पहले से यदि उसका व्याख्या किया जीव गोस्वामी ने, उन्होंने कहा इस मंत्र से केवल राधा रानी की उपासना होती है, यह गायत्री का जो तीन संध्या अध्ययन करना है, जब वो देवस्य भर्ग उनके तेज को शक्ति को हम आश्रय करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वंदना करते हैं, उनके सेवा करते हैं, तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा नमो राधिका हुई तदीय प्रिया हुई, दोबारा कहा क्या? नमो राधिका हुई और तदीय प्रिया हुई, तदीय यहाँ तदीय किसने कहा? इस बात को बड़े ढंग से समझना चाहिए, नहीं तो बुद्धि मारी जाएगी। पहले कहा नमो राधिका हुई, हैं आ राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ, फिर क्या कहा? तदीय प्रिया हुई। तदीय कौन है? तदीय भगवान के गंगा यमुना तुलसी हैं और जितना सखियाँ मंजरियाँ और सभी उनके तदीय हैं और मदीय, या मदीय प्रिया हुई नहीं कहा, मेरा नहीं कहा, तदीय प्रिया हुई, आपके प्रियों को भी, आपके जो तदीय है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप बुद्धि ठिकाने आए, पहले तो कल भगवान 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 करते रहे, हैं जैसे और संप्रदायों में क्या करते हैं, कोई अल्लाह खुदा तल्ला बिस्मिल्लाह करते रहते हैं, कोई हैं गॉड 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 करते रहते हैं, कोई कुछ करते हैं, किंतु भगवान के निजजनों को आश्रय नहीं लेते हैं, और विशेष करके राधा रानी का आश्रय लेने से भी नहीं होगा। इससे बतलाया तदीय, जो तद्वस्तु है उनके तदीय बहुत नज़दीक की, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, आश्रय लेता हूँ, उनके आप प्रिय है। फिर क्या कहा? नमो अनंत लीलाय। अब जो वो बताया अनंत लीलाय, ये अनंत लीला क्या है? एक ही लीला नहीं, आज कुछ भक्तों के साथ भगवान कुछ लीला कर रहे हैं, काल को कुछ लीला और कुछ कर रहे हैं, ये अवर्णनीय अनलिमिटेड है, कभी संभव नहीं है इसको कोई भी वर्णन करके एकत्रित करके बोल दे ये समस्त हो गया, अब भगवान का लीला समाप्त, मैंने सब संकलन कर ली, ये मूर्खता है। अरे ये कितनी लीला है? अथा अनंत लीला। कैसे अनंत लीला? तो उसके लिए गुरुवर्ग कहते हैं भगवान स्वयं खुद ही नहीं जानते हैं अभी कौन सा लीला करना है, कौन सा लीला होना है, उनको वो पता नहीं है। जैसे बताया किसी एक समय भगवान स्वयं कृष्ण अपने भ्रमण कर रहे हैं और अटेरी में बैठे हैं कुसुमा से मधुमंगल का लेके। कहाँ बैठे हैं? घर के बाहर गोपुरम होता है बड़े ऊंचा, और साउथ में जाने से दिखाई देता है वो मंदिर के एक बुर्ज इतना ऊंचा नहीं होगा जो गोपुरम गेट ऊंचा होगा है। उनके विचार है कि भगवान हमारे दरवाजे में बैठे हैं सदा सर्वदा। तो आज कृष्ण स्वयं गोपुरम के ऊपर गया, जाकर बैठे किसके साथ? सखा के साथ। उनको माने बचपन से बंसी दे दी थी, तो बंसी को सबसे साथ में रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। आज बंसी को लेके ऊपर बैठे हैं सखा के साथ, विचित्र वृंदावन की और ब्रज की हाँ छवियों को देख रहे हैं। कितना सुंदर, कैसे सुंदर मोर है, कैसे सुंदर पपी है, क्या कोयल, क्या तोते और हिरण और रंग बिरंगे हिरण, कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, उत्तर के तरफ से और सुंदर सुंदर मलय पवन प्रभावित हो रहे हैं, सुगंध चंदन और केसर सुगंध लेकर के नहीं, कस्तूरी मृगनाभि, वो कस्तूरी के गंध इतना मानी शक्तिशाली है, इतना मीठा है, इतना सुंदर है, वहाँ दुर्गंध की अस्तित्व नहीं रहता और न कोई ठहर सकती। सुगंध कस्तूरी के सब जगह छा गया, वन उपवन सब नाचने लग गए, क्या सुंदर है। फूलों में डबल गंध छा गया और पानियों में सुगंधी छा गया, हवा पवन देवता कृतार्थ हो गए, धन्य है भाई आज ये ब्रज धन्य है। एक तो चंदन सुगंधी था, एक तो भगवान के परिकारों के कमल के गंध उस वहाँ से, और आज कस्तूरी के गंध से परिपूर्ण हो गया। इतने में क्या हुआ, पवन देवता धीरे धीरे धीर समीरे जमुना तीरे वसत बने वनमाली, गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी लिखते हैं। ओ धीर समीर, कहाँ है पवन देवता भी धीरे धीरे चलते हैं, क्यों आस्वादन करता हुआ, भागता नहीं है, ये नहीं कि वो आ गया तो टाइडल वेव्स और स्ट्रोम आ गया, ए 2000 किलोमीटर वेग से जा रहा है, दुनिया उड़ा करके पानी पानी 20-40 फुट लेके भाग रहा है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है उनके पास। किंतु वृंदावन में यह मलय अनिल यह कैसे चल रहा है, कभी वो लिख रहा है जयदेव गोस्वामी, धीर समीरे जमुना तीरे वर्ष तो बने वनमाली, वनमाली बसे हुए हैं बड़े सम्मान के साथ, इज्जत के साथ परिवेशन कर रहा है। यह नहीं कि पंगत पड़ गया तो खाना कैसे फेंक रहा है, ए रोटी के टुकड़ा ऐसे फेंक रहा है, मिठाई यूँ फेंक रहा है, सब्जियाँ ऐसे दे रहा है कि कपड़े वपड़े सब भर जाए, दाल ऐसे दे रहा है उसको अभिषेक कर रहा है, स्नान करा रहा है, ऐसे कट्टर पाखंडी दुष्ट दानव हैं आकर के अपना अपना शान दिखाता है, मैं सेवा करता हूँ, किंतु ये नहीं जानता है नम्रता विनयता नहीं है, धैर्य नहीं है, हैं सोचते हैं है, ये सब भूत प्रेतों को गाय भैंसों को कुत्तों को डाल रहे हैं, इंसान या वैष्णव या भक्तों को परिवेशन कर रहे हैं बड़े नम्रता से, नहीं यूँ फेंक रहा है कुत्तों को दे रहा है ऐसा लगता है। तो ये सब इंसानियत है, क्यों उनके अंदर वो भक्ति नहीं है, तो शक्ति नहीं है, नम्रता नहीं है, विनयता नहीं है। तो आज ये पवन देवता कहते हैं आज ब्रज में आकर के मेरा जीवन भी सार्थक हो गया। तो इससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती बात लिखते हैं हैं, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी जोगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपी तस्या नमस्तु विश्वानु भूव दिशेपी। ओ पवन कहता है मेरा धन्य हो गया जीवन, मैं राधारानी के वर्षांचल को स्पर्श किया और आकर के जब कृष्ण के पास पहुंचा, कृष्ण नाचने लग गए, तुम मुझे बहुत बड़े अमूल्य रत्न अमूल्य संपत्ति ला के दिया कि राधारानी का अंचल स्पर्श करके उसके सुगंध ला करके मुझे दिया, मेरे जीवन को कृतार्थ कर दी। तो आज कृष्ण गोपुरम के ऊपर बैठे हैं, इतने में वो पवन देवता वो बंसी के अंदर बांस के जो टुकड़ा था उसके अंदर प्रवेश कर गया, और प्रवेश करके जब बाहर आने लग गए इतना सुंदर सुरीले कंठधर कंठस्वर हैं, ऐसे मेलोडी ऐसे तान निकला, वो भी हैरान हो गए। भाई आज मैं सब जगह प्रवेश करा, ऐसी सुंदर तो शब्द निकला नहीं, आज यहाँ से इतना सुंदर शब्द क्यों निकलता है, हैं? आज वो भी कृतार्थ हो गया। कहते वाह ये बंसी ये बांस के टुकड़े हैं ये कृष्ण के अधर में विराजमान हैं, और वो जठर पटे कमर में रख लेते हैं, कभी हथेली में रखते हैं, उनका प्रिय है, और इसमें प्रवेश करते ही सुंदर शब्दावली निकलने लग गया। क्या निकलने लग गया? उसमें सबसे पहले हैं ओमकार निकला। बचपन में कृष्ण सोए हुए हैं तो जीव गोस्वामी में कहते हैं कृष्ण ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं, ओम ओम बोल रहे हैं, हैं? और सबको पवित्र नहीं सबको दीक्षा दे रहे हैं। अब आज ये बंसी के शब्द कैसे निकली? सबसे पहले बीज मंत्र क्लिंग निकला, ये शब्द जाकर के पूरा ब्रज को छा दिया। पूरे ब्रज में किशोरियाँ तो नहीं अभी तो कुमारियाँ हैं, वो मूर्छित हो गई। वहाँ बैठे हैं कौन? बरसाने में विश्वानपुर उत्तर से हवा आ रहा है और दक्षिण में है, वहाँ राधा रानी के पालतू तोता सोने के पिंजरा में, और उनको खोल करके श्रीमती लाल लड़ा रही है और क्या अनार के दाना खिला रही है, और कभी दूध और भात खिलाती है और उनसे बातचीत करती है, सिखाती है भगवान के नामों का गुणावली पढ़ाती है। वो अंतरंग नज़दीक के हैं, जब देखा कि ये शब्द आया बंसी ध्वनि वो मूर्छित हो गई, छटपट करने लग गई, शरीर विवर्ण हो गया। तो अब ये तोता कहता है ये कौन ऐसे निष्ठुर है निर्दयी है ऐसे बाण मारा ऐसे शब्दा का बाण जो हमारे ईश्वरी को हाँ मूर्छित कर दी, और नीले पड़ गए ये क्या हो रहा है, कौन ऐसे निष्ठुर निर्दयी है हाँ? उड़ करके शब्द जहाँ से आ रहा था उधर ही भागे। चलते 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 जब नंद भवन के पास आया देखा यहाँ से शब्द निकल रहा है बड़े सुंदर सुरीली, क्योंकि पवन देवता प्रवेश कर रहे बाहर आ रहा है तो उन्हें पता नहीं उनको क्या हो रहा है क्या लेके जा रहा है, और सर्वत्र इसको बांट रहे हैं। जब आम के पेड़ में बैठ गए घने पत्तों के अंदर और बैठ करके राधा ने सिखाया कृष्ण के नाम, उन नामों का गुणगान कीर्तन करने लगे। तो कृष्ण कहते हैं इतने सुरीली कंठस्वर इतना सुंदर कौन कीर्तन कर रहा है। मधुमंगल को कुसुमा सबको कहते हैं देख भैया यहाँ कौन गा रहा है, दिखाई तो दे नहीं रहा है कोई, बड़े गहरी से दिखा तो दिखा आम के पेड़ में एक तोता बैठा है और वो बड़े सुंदर गा रहा है कीर्तन कर रहा है, एक पैर से पकड़ रहा है एक पैर से नाच रहा है और कीर्तन कर रहा है। तो कृष्ण बोले थोड़ा अनार दाना ले आओ चेरी ले आओ फल ले आओ, ये लालची है इसको दिखाऊंगा तो ये आ जाएगा। तो जैसे हाथेल में लेकर उनको दिखाया आ जा बुलाया हैं तो आ गया, दाना उनके मुंह में डाला तो लाल लड़ाने लग गए। कैसे कृष्ण सर्वाकर्षक है, और जो राधा रानी के जन हैं उनको कृष्ण कैसे प्यार करते हैं इस बात को यहाँ दिखा रहे हैं। जीव गोस्वामी प्रभु स्वयं कहते हैं गोपाल चंपू में भाई देखो भगवान किसको प्यार करते हैं, जो राधा रानी के अंतरंग है राधा रानी के निजन है राधा रानी के नज़दीक में है उनको कृष्ण कितना प्यार करते हैं, और लाल लड़ाते हुए प्यार करते हुए उनको लेके उतर करके अपने भवन महल में पहुंच गए। वहां पहुंच करके अपने बिस्तर के ऊपर में उसको रख दिया और सुंदर सुंदर नंद भवन के फल मिष्टान्न उनको खिला रहे हैं, मक्खन खिला रहे राबड़ी खिला रहे वो खा रहा है घूम रहे है और कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि सिखाया राधा रानी ने मंत्र पढ़ाया उसको सब ज्ञान है, और गुणगान को नाच रहा है गा रहा है खा रहा है। और इधर राधा रानी मूर्छित होकर पड़ी है विश्वभानुपुर में, अब उनके जो एक जो मित्र एक जो शिष्य एक जो हैं वो भी भग गया, अब तो कोई नहीं। ललिता देवी आई, विशाखा आई, देखा राधारानी मूर्छित पड़ी है, क्या हो गया? जब बड़े मुश्किल से होश आया तो बोले वो कहाँ गया तोता, उसके लिए शायद दुखी है। तो देखा राधारानी कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि हृदय की व्यथा इतना आसानी से निकलता नहीं। तो ये बोले कहाँ गया, तो ढूंढते ढूंढते ये लोग नंदभवन आया। जब नंदभवन आए देखा कृष्ण के छाती पर बैठा हुआ है वो तोता, और बड़े लाड़ा लड़ रहे हैं और गोदी में चिपका रखा है। तो जसोदा माता को जाकर बोले माँ देखो दिन भर तो पशु के साथ रहता है, अब घर में है थोड़ी देर के लिए, देखो चिड़िया को ला करके अपने छाती में रख रखा है और ना उसको उसके साथ खेल रहा है, आगे चल के क्या होगा, बुद्धि बिगड़ेगा कि नहीं। जसोदा माता बोले अच्छी बात है, जल्दी गई, ऐ क्या कर रहा है, झट पकड़ लिया तोता को, लाया किसी साथ खेल रहा है, लाकर ललिता को दे दिया। ललिता ने तंचल में छिपा के जल्दी भागी, आई तो विश्वानपुर में उनको दिया। और राधा रानी कहती कहाँ चला गया भाई मेरे को छोड़ करके, बोल मैं पशु बुद्धि हूँ ना, कोई लाड़ लड़ाता है पैर करते मैं भूल जाता हूँ, मैं तो आपको दुखी देख करके सोचा जा करके मैं ये बताऊँ, भाई क्यों जहर को उगाल रहे हो, हमारे ईश्वरी को हमारे प्राणेश्वरी को तुम्हें मूर्छित कर दिया, उनका अवस्था तो देखो, क्यों तुम ऐसे कार्य करते हो, गया मना करने के लिए और मैं ही फंस गया और निकल भी नहीं पाया, ये तो बड़े भाग्य थी मेरा कि ललिता देवी ने मुझे उठा कर ले आए, नहीं तो मैं कभी नहीं निकल सकता। वो ऐसे है हैं चापलूसी करने वाला, चिकनी चपड़ी बातें करने वाले, और बोले बुलबुले हमें देने वाला, ओ आपसे अलग करने के लिए बैठे हुए हैं, अब बोले अब कभी मत जाना मुझे छोड़ के, नहीं कभी नहीं जाऊंगी, जाऊंगा मैं यहीं रहूंगा हैं। तो ये कृष्ण खुद ही नहीं समझते अभी कौन सा लीला होने वाला है हैं। ये बंसी ने पहले बार इतना सुंदर अमृत को निकाला, इसके बाद कृष्ण स्वयं बंसी वादन करना सीखा हैं, और उस बंसी के द्वारा अधरामृत के द्वारा जगत को प्लावित कर दिया, प्लावित कर दी हैं। इसे कहते हैं नरोत्तम ठाकुर, कब मेरा ऐसा दिन आएगा, कब कृष्ण धन पाबो हियार माझारे थोबो जुड़ाई वो तापित पुराण, कब मेरे को ये कृष्ण वंशी ध्वनि सुनाई देगा हैं, इस अधोरा में तो पान करूँगा। किंतु जब तक कोई श्रीमती जी के प्रिय नहीं होगा तब तक उनको कृष्ण के प्रियता नहीं मिलेगा। कहते हैं कबीराज गोस्वामी, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ये तीन ठाकुर गोड़ियारे करिया से आत्मसात, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन और किसी को नहीं, एकमात्र गोड़िया अर्थात राधारानी गौरी के जन, राधारानी के जो इनको आश्रय लिया उनको ही अपनाया और उनको ही अपना चरण में स्थान दिया, नहीं तो किसी को नहीं। तो यहाँ पर कहते नमन अनंत लीलाय, ये अनंत लीला हैं किसके साथ, अपने प्रियाओं के साथ। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भाई ये हृद्रोग कैसे जाएगा, ये जाने वाला नहीं है, जन्म जन्मांतर में कोई साधन करके हृद्रोग को कोई मिटा नहीं सके हैं, ये नहीं मिटने वाला है। एकमात्र एक ही उपाय है, विकृतम ब्रजवधु कविवृदिंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्यात अतवर्ण्यज्य भक्तिपराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगम आशु अपहीनत्व अचिरेण धीर। योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा और कोई उपाय से हृद्रोग जाएगा, कहते ही जाएगा नहीं, केवल विकृतम ब्रजवधु, भगवान ने जो लीलाएँ की ब्रजदेवी को साथ उसको यदि कोई श्रद्धालु व्यक्ति हो और यदि अनुसृणयात अथवर्णय कोई वर्णन कर रहा है श्रद्धा के साथ उनको सुना, तो उनको श्रवण कीर्तन के द्वारा उनका हृद्रोग सदा के लिए चला जाएगा और उनको ये लीला के द्वारा ही, लीला रस के द्वारा उनको सदा के लिए अनर्थ से और समस्त प्रारब्ध प्रारब्ध से कूट पापी अविद्या से अस्मिता राग देश अभिनिवेश से मुक्त करके भगवान के उसमें सेवा में प्रवेश अधिकार देंगे। इससे सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यही लीला कथाओं को श्रवण कराया और कुछ नहीं दिया। आज इस लीला रस के द्वारा ही उनको मुक्त कर दी और भगवत धाम में भगवत सेवा में अधिकार दे दी। इसके पहले बहुत कुछ जानते थे परीक्षित महाराज, बहुत कुछ दान पुण्य किया, यज्ञ किया, बहुत कुछ तीर्थ किया, बहुत परिचर्य सेवाएं की, किंतु कृष्ण के ये ब्रजलीला सुने नहीं कभी है। और विशेषकर ब्रजलीला में भी ये जो तदीय प्रिया हुई, उनके प्रिया और पहले बताया नमो राधिका हुई, केवल एक राधारानी नहीं और तदीय और जो सखियाँ मंजरियाँ हैं उनके साथ जो भगवान के लीलाएँ हैं, ये लीला अनंत अथा है। इस में अवगाहन करने के बाद में और कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ परिपूर्ण हो जाएगा। हाँ, उनका और कोई स्वतंत्रता और अपव्यवहार नहीं करेगा और कोई दूसरा अभिलाषा नहीं रह सकता है, तभी आनुकूल्यन कृष्णानुसरणम उत्तम भक्ति प्राप्त करेगा। क्यों? उत्तम भक्तों के आश्रय लेने पर उत्तम भक्ति का ही जजन कर सकता है। तो ग्रंथकार कहते हैं ऐसे अनंत लीला है देवायतुभ्यम, तो उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ, अलौकिक लीलाओं को, वो हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो। इससे दामोदर अष्टक को इतना कार्तिक महीना में व्रत वाले के लिए सुबह शाम दोपहर सब समय कीर्तन करने के लिए विधान दिया, जिससे कि जाने न जाने, समझे न समझे इसके कीर्तन करने से कभी न कभी भगवान के प्रियजनों के आश्रय मिलेगा और वो अर्थ अनर्थ नहीं करने देगा, उनको समझा करके उनको आगे सेवा अधिकार और ब्रज सेवा अधिकार देंगे। और ब्रज सेवा अधिकार के लिए कोई और उपाय नहीं है। आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम लोग आगे का श्रवण करेंगे। गौर प्रमानंदे।